वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
12.3 एंड 4 टुडे इज इट श्योर लाइव कर दिया आपने सो हम आज पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ रूप से अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 3 और 4 यस ये त्वक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान किसकी बात कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं, करने के लिए कह रहे हैं? माइक आप लोगों का चालू है? माइक चालू है? माइक पे पूछिएगा, बताइएगा। इसको शायद गेन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा स्पीकर से। एक मिनट बोलने दीजिए। बोलिए आपको नहीं।
भगवान जो है जो अपना ही ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान ही निराकार हैं और सर्वत्र इंद्रियों से परे हैं।
इसीलिए मैंने प्रश्न किया था। तो क्या भगवान अपना ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, या ब्रह्म का ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं?
भगवान का ही तो।
हाँ हाँ ठीक है, लेकिन भगवान का ध्यान नहीं कर रहे हैं। भगवान का ध्यान कौन कर रहे हैं? पिछले वाले श्लोक में जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं। तो देखिए, लेकिन बोलने का अर्थ क्या है? लेकिन बोलने का अर्थ है कि ये लोग हीन हैं। और इसमें लिखे हुए हैं दो श्लोकों की चर्चा करेंगे जो इस बारे में चर्चा होगी, मतलब इस पद्धति की चर्चा होगी। इसलिए हम आज 3-4 और प्रयास करेंगे 5 की चर्चा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मुझे प्राप्त करते हैं, इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। भगवत धाम की प्राप्ति इस प्रकार की साधना से नहीं होती है, क्योंकि हमने 11वें अध्याय में स्पष्ट पढ़ लिया था, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्पतः ततो ज्ञात्वा। यही तो है विशति तदनंतरम। हाँ, तो हम भगवान में व्यक्ति प्रवेश करता है या भगवान के धाम में प्रवेश करता है जब भगवान को तत्व में जानता है, और तत्व में तभी जानेगा वो भगवान की भक्ति करे। ये भगवान की भक्ति नहीं है। तो ये ज्ञान पद्धति है। यस, तात्पर्य जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा ना करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। तो यहाँ पे देखिए, एक अर्थ समझ लेना चाहिए इस शब्द के, कि मुझको ही प्राप्त करते हैं। दो अर्थ हैं, एक कि ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, और दूसरा कई जन्मों के रोटेशन के बाद जब वो भक्त बन जाते हैं तो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये भी अर्थ है, जो कि हमने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से भी यही सुना इस बात को, सेम दोनों अर्थ हैं इसके। मुझे प्राप्त करते हैं यानी ज्ञानी कई जन्मों के भजन के बाद समझ में आ जाकर, नहीं मैं ज्ञान युग में क्यों पढ़ा हुआ हूँ, मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करता है, एक ही अर्थ है। और दूसरा अर्थ ये है कि बहुत मतलब इस प्रकार की साधना करके वो ब्रह्म की प्राप्ति करेगा। दोनों अर्थ लेने चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद उस अर्थ को ले रहे हैं। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है, अर्थात किसी भी जीव से द्वेष नहीं करना होता है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, आप लोग 11.55 में भी देखे थे, एक गुण है भक्त का जो भगवत धाम जाने के योग्य है, और वह है निर्वैर। आप लोगों को याद हो श्रीमान वृंदावन चंद्र प्रभु जब क्लास दे रहे थे उस दिन बारिश वाले दिन, तो इस शब्द पे बड़ा वो फोकस कर रहे थे। वो कह रहे थे न्यस्त दंड, दूसरों को दंड देने की भावना, दूसरों से वैर करने की भावना से जब तक व्यक्ति मुक्त नहीं होता है भगवान के धाम नहीं जा सकता। किसी को याद है वो जिसमें जिस दिन बड़ा स्पेशल क्लास था वो नेस्त दंड, कई बार उन्होंने बोला नेस्त दंड, दूसरों को दंड देने की भावना, दूसरों से वैर करने की भावना से मुक्त होना चाहिए, चाहे वो ब्रह्म में जाना चाहे, चाहे वो भगवान के धाम जाना चाहिए। एक बार इस बारे में बृहद भागवतामृत महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कि आप भक्ति में खुश होना चाहते हैं तो दो चीज कीजिए। बड़ा मुश्किल है। एक, अगर आपने किसी भक्त को अपराध किया है तो आप जाकर के उनसे माफी मांगिए, ये भी मुश्किल है क्योंकि कभी कभी लगता है नहीं उसके प्रति तो अपराध नहीं किया था मैंने, आई डिड नॉट मीन इट, एक्चुअली मैंने अपराध नहीं किया था। और दूसरा स्टेप है कि आप भक्त के पास जाएं और बोलें कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सोचा कि आपने मेरे प्रति अपराध किया है, ये और मुश्किल है। जैसे कि भगवान विष्णु ने क्या नाम थे भृगु ऋषि के प्रति किया, ये किया है कभी आपने? ये तो किसी भक्त ने कभी नहीं किया, मैंने भी कभी नहीं किया। जिस व्यक्ति ने वाकई आपके आपको लग रहा है कि आपके प्रति अपराध किया है, उसके पास जाकर कहना कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं सोच रहा था कि आपने मेरे प्रति अपराध किए, कभी नहीं किया, मैंने तो कभी नहीं किया। उसके बारे में हम कंप्लेन करते हैं, यस। जैसे कोई मान लीजिए पोस्टमैन है, वो हमारा ही बिल लेके आया है, हम ही ने गड़बड़ करी है, तो क्या हम बिल जो पोस्टमैन है उसको गाली देते हैं? अरे तू बिल क्यों लेके आ गया? आप समझ रहे हैं मेरी बात? और हर व्यक्ति हमारे कर्मों का प्रतिदान कर रहा है, तो ये सोचना कि कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ गड़बड़ कर रहा है, ये भी एक अच्छी भावना नहीं है। ये आगे आएगा, भगवान ऐसे भक्तों से किस प्रकार से प्रेम करते हैं। सब लोग जानते हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में, हरिदास ठाकुर जी के बारे में, अमरीश महाराज के बारे में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमरीश महाराज सोच रहे थे कि उन्होंने अपराध किया था दुर्वासा मुनि के प्रति, उनकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं, पूरे टाइम वो सोचते रहे। तो ऐसी शुद्ध चेतना अगर होगी तो आनंद में हम लोग नाच सकते हैं भक्ति में। खैर, ये एक पॉइंट था, सभी भक्तों के जीवों के प्रति है सेवा भावना होनी चाहिए, कल्याण कार्य में रथ होना चाहिए। इसका यह अर्थ, उसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? भगवान के पास जाना तो आसान है, मंदिर जगह जगह खुले हैं, तो तपस्या करने की क्या जरूरत है? क्या तो बताइए, यहां से मंदिर जाने में क्या तपस्या? इस्कॉन के मंदिर जगह जगह खुले हुए हैं, और भी मंदिर हैं भगवान के, तो तपस्या करने की क्या जरूरत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस,
तपस्या का यहाँ पे अर्थ ये है कि अपने भोगों को त्याग करके,
वो सब ठीक है लेकिन करने की जरूरत क्या है? ये तो सही है, तपस्या का अर्थ है अपने भोगों को त्यागना, ये सब करना, वो सब ठीक है, लेकिन भगवान के पास जाने से पहले तपस्या करने क्यों पड़ती है? बहुत सिंपल है, लेकिन लेट्स सी, मेरे जीवन तपस्या करने के लिए है और
हमारा मन शुद्ध हो जाए।
अरे वाह, सही उत्तर। देखो पार्थ कृष्ण प्रभु को मैं कितना बोलता हूँ क्लास दो, लेकिन देते नहीं है, लेकिन ये टिप्पणी जरूर देते हैं, और ये सही टिप्पणी देते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं। जब हृदय शुद्ध होता है तब वो भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा होती। आप सब लोग जानते हो जिसके जीभ पे भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है उसने सारी तपस्याएं पहले कर ली, तभी भगवान के नाम की श्रद्धा है, उसका नाम जीभ से नाम उच्चारण हो रहा है। तो पार्थ प्रभु आपने भी क्लास देनी है, आप सीख गए हो सब कुछ, सही उत्तर है। और इस चीज को प्रभुपाद जी बोल ही रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ठीक है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। हु इज इंटरेस्टेड? आप में से कोई इंटरेस्टेड है इस प्रकार की साधना में? और एक अमेजिंग बात है, हमने आगे पढ़ेंगे 15 अध्याय में, सो श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाया मनश्चायम विषयानुपसेवते। कैसे इस जीव इस जगत में फंसा हुआ है, आँख से, कान से, नाक से, जीव से और अपनी त्वचा से वो इंद्रिय भोग कर रहा है, और मन में संस्कार पड़ रहे हैं, और फिर वो लिप्त होता जा रहा है। ये 15वें अध्याय में, आई थिंक 15.9 है। तो अब अभी देखिए कि भक्ति में हम लोग इसका जस्ट सेम क्रिया कर रहे हैं, खाली कृष्ण का विषय जो है वो खाली कृष्ण कर दिया, श्रोत्र मतलब कृष्ण कथा सुनते हैं, बहुत जोर दिया जाता है, कृष्ण के बारे में बोलते हैं, आंखों से कृष्ण का दर्शन करते हैं, नाक से कृष्ण का गंध सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, अगर किसी को विग्रह स्पर्श करने का मौका मिले या भक्तों को हम स्पर्श करते हैं, तो इस प्रकार से आप देखिए कि वही कार्य करना है हम लोगों को जो हम लोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन कितना विपरीत है इन लोगों की साधना। आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, उसके बाद अंतर्मुखी होने का प्रयास करो। एक अद्भुत बात है कि भक्त लोग बाह्य वृत्ति वाले लगते हैं लेकिन उनकी वृत्ति अंदर हो जाती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ऐसा लगता है भक्त बाह्य रूप से कार्य कर रहा है लेकिन उसकी वृत्ति आंतरिक होती चली जाती है। जितना वो भगवान की सेवा में संलग्न होता है बाह्य रूप से भी, उतना ही उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। श्रवणम कीर्तनम सब तो बाह्य क्रियाएं हैं ना, फिर भी बढ़ने लगता है। जैसे हमारे श्रीमान सार्वभौम प्रभु ने बहुत सुंदर बताया, कहा कि देखो एक बीज में पेड़ होता है कि नहीं होता है, लेकिन बीज में जल और सूर्य की रोशनी बाहर से दी जाती है लेकिन उससे पेड़ प्रकट अंदर से हो जाता है। कितना सुंदर उदाहरण है। ऐसे ही सभी के हृदय में भक्ति है लेकिन बाहर श्रवण इत्यादि क्रिया करने से, बाहर से क्रियाओं को करने से, इंद्रिय क्रियाओं को करने से हम लोग भक्ति को जागृत कर लेते हैं। तो कितना विपरीत साधना है उन लोगों की, क्योंकि जीवात्मा के लिए इस प्रकार से इंद्रियों के कार्यों को रोक देना ये असंभव। तो इसलिए मैं आप लोगों को डिस्करेज कर रहा हूँ कि साधना में मत जाइए। वैसे तो आप लोग पहले से डिस्करेज हैं इसके लिए, लेकिन और कोई अगर सुनेंगे तो समझ लें कि हमको इस प्रकार की साधना में संलग्न नहीं होना। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। आज मैं इसके ऊपर सोच, एकदम से सुंदर विचार आया था। देखिए, हम किसी से ईर्ष्या क्यों करते हैं? हम सुखी होना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि इस व्यक्ति के पास ये वस्तु है तो ये देखिए कितना सुखी है। ये एक प्रकार का इल्यूजन है हमारे मन में कि कोई भौतिक वस्तु किसी व्यक्ति के पास है तो बहुत सुखी है, और इस कारण से हम ईर्ष्या करते नहीं, ये वस्तु मेरे पास भी होनी चाहिए। यस, किसी के पास बंगला है, सुंदर स्त्री है, गाड़ी है तो वो सुखी है। हम सब लोग, अब मेरी बात समझ रहे ना, हम हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है और वो सोच रहा है कि भौतिक वस्तुओं से सुखी होते हैं। तो अगर मान लीजिए इनके पास अधिक पैसा है तो मैं सोचता हूँ इनके पास अधिक पैसा, ये अधिक सुखी हैं, इसलिए मैं इनसे ईर्ष्या करने लग जाता हूँ। और भक्त लोग ईर्ष्या से कैसे मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि उनको वस्तुतः वाकई सुख देने वाली वस्तु प्राप्त है। क्या है सुख देने वाली वस्तु? भगवान का नाम, भगवान का रूप, गुण, लीला, ये वाकई सुख देने वाली वस्तु है। और वो भी जानते हैं कि जैसे मैं इसको सुख अनुभव कर रहा हूँ, दूसरों को देने से ये सुख और बढ़ जाता है, तो ईर्ष्या से मुक्त हो जाते हैं।
सवाल है कि जैसे आपने कहा कि भौतिक वादी लोग दूसरों के बंगला गाड़ी देख के जो है ईर्ष्या होते हैं, भक्तों के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी भक्त एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, इसका क्या कारण है?
नहीं,
नहीं, जनरली बहुत सारे भक्तों के उदाहरण है, जैसे कहते हैं कि वो भक्त मुझसे जेलस करता है, ये जेलस।
अगर आप प्रसादम आज आपने पाया कि नहीं पाया, आज तो पहले प्रसादम पाया था ना, तो आप जब पूरा पेट भर गया था उसके बाद भी आप चिंता करते हैं कि दूसरे को प्रसादम मिला कि नहीं मिला, क्षमा कीजिएगा, दूसरे को आइटम क्या मिला नहीं मिला। जैसे हमारे केशव प्रभु ने सर्विंग कर रहे थे तो उन्हें खूब सारा सलाद वलाद जो मुझे चाहिए था वो मुझे सब दे दिया। अब बगल में ये अपनी प्लेट में क्या खा रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो अगर हम भक्ति में तृप्त हैं तो जेलस होने का क्या मतलब है? उल्टा, जितना हम भगवान की भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, और अगर आप जितना दूसरों की मदद करने का प्रयास करेंगे आपके पास वो और बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैंने आपको एक एप्पल दिया और मेरे पास एक एप्पल था तो कितने एप्पल बचे मेरे पास? प्रभु जी उत्तर जनरली क्या होता है? अगर मेरे पास एक एप्पल है और मैंने आपको एक एप्पल दिया, आज एकादशी, इसलिए हम फल का उदाहरण दे रहे, तो आपके पास मेरे पास कितने एप्पल बचे?
क्योंकि देखो ये मैं इसलिए सवाल,
नहीं पहले मेरे उत्तर दीजिए।
एक भी नहीं बचा,
एक भी नहीं बचा। और कृष्ण भावना का एप्पल अगर मैं आपको देता हूँ तो मेरे पास कितने बचे?
जितने
दो, और फिर दो बाद मैंने आपको भी दिया और इनको दिया, उसका कितने बचे? चार। उसके बाद अरे चार लोगों, एक दो तीन चार को दे दिया, फिर कितने बचे? आठ। सबको दे सकते हैं। तो जलसी का कारण क्या है? हृदय की अशुद्धता। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम प्रचार कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, तो अच्छे भक्त सुखी होते हैं। आप देखिए चतन चरितामृत में किस प्रकार, इतना फीडबैक क्यों हो रहा है? मे बी स्पीकर कैन बी टर्न लिटिल बिट ऑन इट, हाँ ऐसे करते। तो आप देख सकते हैं श्रील रूप गोस्वामी नए भक्त हैं कंपैरेटिवली, और उनकी कविता की प्रशंसा महाप्रभु सब सीनियर भक्तों के सामने कर रहे हैं जानबूझ करके, ये चेक करने के लिए कि क्या सीनियर भक्त भी प्रसन्न होते हैं। और वो बड़ी हृदय से प्रशंसा कर रहे हैं, रामानंद राय जी, स्वरूप दामोदर, सब लोग बड़ी हृदय से प्रशंसा कर रहे राम। तो इस प्रकार से जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा में जब महाप्रभु एक स्पेशल श्लोक गा रहे थे, और वो असली श्लोक नहीं था, मतलब वो किसी भौतिक रचना के लिए था, एक लड़का लड़की एक लड़के के लिए गा रही है, तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों लिखा है। फिर वो उसको शिला रूप गोस्वामी लिपिबद्ध करते हैं, फिर से रचना करते हैं कि मैं वही राधा हूँ और वही कृष्ण है, इस प्रकार से बहुत कोई श्लोक लिखते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि इन्हें कैसे पता चल गया तुम्हें मेरी, मतलब मेरे गुह्य हृदय की बात। तो रामानंद राय कहते हैं आपने ही उनको हृदय में स्फुरित कराया। तो उनका हाँ, मैंने इनके गुणों को देखा था, देखिए महाप्रभु गुणगान करें, मैंने इनके गुणों को देखा था और जब मैंने इनको आलिंगन किया तो मैंने इनको शक्ति संचार किया। तो ऐसा नहीं कि रामानंद राय को कोई द्वेष हो रहा है, तो ये हृदय की अशुद्धता के कारण।
सारे जो है बहुत शुद्ध भक्त हैं, लेकिन हम जब कनिष्ठ स्तर पे हैं, बहुत निम्न स्तर पे हैं, तो ऐसी बहुत सारी बातें हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के और ऐसी बहुत सारी बातें आप भी इस साथ को समझते हैं कि अगर किसी को कोई पोस्ट ही मिल गया तो जलसी होती है, या आज ही मुझे एक भक्त बता रहे थे कि बांग्लादेश से जाना ठीक ही हुआ, अच्छा ही हुआ, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं।
देखिए जो भक्त देखो कम से कम
इसलिए मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मैं जनरली सवाल वो करता हूँ कि जो सबके हित के लिए।
हाँ मैं समझ गया, लेकिन देखिए कनिष्ठ भक्त को इसीलिए श्रेष्ठ वैष्णवों के संरक्षण और शिक्षा की जरूरत है। जब वो बार बार सुनेगा कि मुझे द्वेष नहीं करना चाहिए, तो सोचने लग जाएगा अरे हाँ मुझे द्वेष नहीं करना चाहिए। और जब हमेशा कनिष्ठों के बीच में रहेगा तो फिर वो कहेगा अरे तो बढ़िया, ये भी निंदा करते हैं, अच्छा आपने सुना क्या हुआ, आपने सुना, हाँ मैंने सुना, आपने सुना क्या है, तो उन्हें कौन सिखाने वाला है।
ये कैसे मतलब पता चले कि जब कोई भक्त मंदिर में 20 साल से प्रचार कर रहा है या कोई 10 साल से प्रचार कर रहा है और वो भी ऐसे ही बातें कर रहा है, तो हम जो अत्यंत निम्न है वो कैसे ये निर्णय कर पाए कि
क्या कौन आपने अच्छा है, कौन बुरा है? का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा,
पर इसे तो कोई भक्ति ही हमें समझाएगा ना,
तो इसीलिए हमें
निम्न स्तर तो कोई ना कोई तो हमें आइडियल बनाना पड़ेगा हमें,
इसीलिए हमें रोज चर्चा करना चाहिए भक्तों के संग, ताकि हम अपनी गलतियों को समझ सकें। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, जब हम चर्चा नहीं करते हैं हरि कथा की तो इस प्रकार की गलतियों को हम समझ नहीं पाते। ये बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हो, क्योंकि जब हम भक्तों का ही हित नहीं चाहें तो फिर हम अन्य जीवों का हित कैसे चाहेंगे। और जब तक ये भावना नहीं रहेगी तब तक नाम में रुचि आने का संभावना एब्सोल्युटली जीरो नहीं आ सकता। हमें बिल्कुल प्रयास करना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। आचार्यों ने प्रार्थना करी है, क्या है वो सम्मान यथा यथा सकल सम्मान कोरे ते शक्ति देहो नाथ यथा यथा तबे तो गाई वो हरि नाम सुखे अपराध अभिहता। जब तक प्रभुपाद इसको बोलते हैं स्पष्ट कि अगर व्यक्ति नम्र है तो उसके लिए हरि नाम की जप करना बहुत आसान हो जाता है। आप चाहते हो आसान हो जाए या स्ट्रगल करना चाहते हैं जीवन भर, सब चाहते हैं कि आसान हो जाए। तो इस द्वार के बिना आप अंदर नहीं, हम लोग अंदर नहीं घुस सकते हरि नाम। तो हरि नाम के जप के साथ साथ ये अभ्यास भी करना है कि सभी के हित के लिए सोचें, ठीक है।
हमारे लिए सबसे सेफेस्ट क्या करें हम, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें आइडियल बनाना पड़ेगा, जब आइडियल ही लोग
बहुत सुंदर एक सेकंड, कोई ना कोई आइडियल बनाना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि जो हमारे बगल में रहने वाला भक्त है वो हमारा आइडियल है,
क्योंकि जिस मंदिर में है तो जहां
ना, 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 ये गलत है। कोई ना कोई आइडियल हमको बनाना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पड़ोसी मेरा आइडियल है, ये बहुत गलत है।
क्योंकि
आपको आइडियल मिल जाएंगे श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, और उनको सुनने से हमें हृदय में इंस्पिरेशन होती, काश हम भी ऐसे बन सके।
क्योंकि मंदिर के आसपास ही जो लोग है वहीं तो आपको इंस्पायर करते हैं, मतलब वो है, वो चैतन्य चरितामृत में भी है, ध्रुव महाराज प्रहलाद या जो भी भक्तों के चरित्र है, लेकिन बहुत सारा इन्फ्लुएंस तो हमें अपने आसपास के लोगों से ही मिलता है। एग्री करोगे,
जब हमें खराब उदाहरण मिले तो हमें सोचना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं बनना है। जैसे अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप कहेंगे अरे मेरा भी एक्सीडेंट होना चाहिए, क्या हम ऐसा सोचते हैं? नहीं, हम सोचते हैं ये व्यक्ति एक्सीडेंट कर रहा है, ये ध्यान नहीं दे रहा, मुझे सावधान होना है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आज तक आप में से बहुत कम लोग देखते होंगे कि बगल वाले को क्या आया प्लेट में। अगर आपके प्लेट में सब कुछ आ गया जो आपके पास है, तो व्यक्ति को समझ में आना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी भक्ति करनी है, हमें प्रगति करनी है, मुझे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए इस्कॉन में ज्वाइन हुआ हूँ या भक्तों के संग में आया हूँ। अब अन्य लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इट इज़ नॉट माई कंसर्न। हमारे पंकज आंगिर प्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जिन लोगों को आप प्रभावित कर सकते हैं उनके बारे में चिंता करिए, दुनिया के बारे में चिंता मत कीजिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उनको शिक्षा प्राप्त नहीं है। हर जीवात्मा शुद्ध है. अब वो उसको शिक्षा प्राप्त नहीं है, ट्रेनिंग प्राप्त नहीं है, तो नहीं समझ पा रहा है, तो अलग बात है. ठीक है,
थ्रू तो मैं जैसे हम लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा बुरा क्या है, तो
हम लोग चिंता क्यों कर रहे हैं.
आप बहुत सारे भक्त हैं जो मतलब इतने विवेक भी नहीं है कि किसके प्लेट में क्या है, वो देखना ही है मुझे.
तो आप छोड़ दीजिए ना उनको. जिन लोगों को, जो लोग आपकी शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, जो लोग आपकी शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे उनको शिक्षा देने से फायदा नहीं है, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए. जैसे देखिए, मैं फ्लाइट में गया था, जाते समय कोई ऐसा नहीं था जो मेरी बात सुन सके, और लौटते समय एक व्यक्ति मिल गया, तो कम से कम मैंने एक घंटा उसको प्रचार किया. तो अगर वो सुनना ही नहीं चाहता है तो क्या बोलना था. ठीक है
प्रभु जी. हाँ, जैसे ये प्रभु जी बोल रहे हैं कि भक्तों के पास कुछ नहीं होता है, वो उनमें भी देखते हैं कि वो ईर्ष्या करते हैं, तो इस करते हैं, मतलब भक्त मतलब शुद्ध भक्त. जैसे एक श्रीमान रामानंद प्रभु बोलते हैं पुणे के, कि भक्त मतलब शुद्ध भक्त, और घी मतलब शुद्ध घी. ऐसा नहीं कि डिब्बे पर लिख दिया अपना शुद्ध घी है तो घी है. इसी प्रकार हमने अगर कपड़े पहन लिए तो हम भक्त नहीं, हम साधक हैं. तो भक्त अगर भक्त होता है, वो इनमें दोष नहीं देखता है, नहीं ईर्ष्या करता है. मतलब हम अभी प्रयास कर रहे हैं, हमें अपने आप को भक्त भी नहीं समझना.
ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आज प्रभु जी ने बोला है कि व्यक्ति जा किस डायरेक्शन में रहा है. प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे पहले व्यक्ति को सत्वगुण में आना पड़ेगा, और उसका अर्थ है कि हमें चैतन्य होना होगा, हम कर क्या रहे हैं. और ये एक आप अनुभव करेंगे कि काफ़ी कमी रहती है कि हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इससे दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लोग सोचते नहीं. कोई बात नहीं. मेरी माता जी बहुत सिंपल बात बोलती है, सिंपल सी बात, मम्मी की टॉक्स, जिसके पास जितनी बुद्धि होती है उतना बोलता है. बहुत अच्छा है, लाइक हिटिंग द नेल ऑन द हेड. जिसके पास जितनी बुद्धि है उतना बोलता है. तो इसलिए इसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, हमें अपने सुधार के बारे में सोचना चाहिए. ये देख लेना चाहिए कि ऐसा उदाहरण हमको नहीं बनना. जैसे आप कल सुबह अगर भक्तों को सोता हुआ देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ये सोने का समय था, मुझे तो पता ही नहीं था, 5:30 से 7:30, वेरी नाइस, मेरा पिलो कहाँ पे है. क्या हम इस प्रकार से सोचते हैं, क्या आप इस प्रकार से सोचते हो? नहीं सोचते. हम अपना भजन करें, भक्ति करें, और जो लोग इनको हम प्रभावित कर सकते हैं उन्हें करना सिखाएं. ठीक है, ये प्रैक्टिकल है हमारा. आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देख हो गया. ठीक है, तभी वह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है. ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता, उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं. लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती. यह ध्यान देना चाहिए कि भक्ति के प्रगति में अपने आप ही इस प्रकार की भावना जागृत हो जाती, जिसमें व्यक्ति ये देखता है कि क्या है, सभी जीव भगवान के अंश हैं, उनके दास हैं, और जैसे भगवान उनको प्रेरणा दे रहे हैं उसके अनुसार वो कार्य कर रहे हैं. तो ना तो किसी से द्वेष करता है और ना किसी से राग करता है इस प्रकार से. तो ये भक्ति के प्रभाव से अपने आप हो जाता है. समय समाप्त हो गया, तो आज हम लोग दूसरे श्लोक की चर्चा नहीं करेंगे. लेकिन हमने आज ये सीखा कि ये गुण बहुत अच्छा है. ये गुण आप देखेंगे बार बार भगवान बोलेंगे कौन सा भक्त उनको प्रिय है. बहुत सारे भक्त हैं जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं, लेकिन कौन सा भक्त उनको प्रिय है जो सभी जीवों से प्रेम करता है. ऑब्वियसली हम सभी जीवों से प्रेम शुरुआत में नहीं कर सकते, तो हमें कम से कम भक्तों से प्रेम करना चाहिए. क्या आप लोग कल से भक्तों से प्रेम करना का प्रयास करेंगे? और उसका पहला स्टेप है कि भक्तों की निंदा ना करें. अगर आपका मतलब नहीं है, अगर आप अथॉरिटी पोजीशन पे नहीं हैं, तो भक्तों की निंदा करने का प्रयास कम करें एटलीस्ट, या फिर कॉन्शियस तो जाएं कि मैं भक्तों की निंदा कर रहा हूँ. अरे प्रभु जी ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, मुझे पसंद नहीं आ रही. इस प्रकार से हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और आप देखेंगे आपका हृदय दूसरे का नहीं, आपका हृदय कठोर हो जाएगा, हमारा हृदय कठोर हो जाएगा. बहुत सारी चीज़ें जगत में जो हमको पसंद नहीं आती और नहीं आएंगी भी. हम भगवान नहीं हैं, हम कंट्रोलर भी नहीं. तो ये हमने आज एक शिक्षा, भले ही हम लोग निर्विकार ब्रह्म की उपासना नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों को प्रयास करना चाहिए. आज मैं अनुवाद कर रहा था, तो उसमें बात कर रहे थे कि जब कोई नया व्यक्ति आए तो उसको बहुत ही घर जैसा वातावरण महसूस करना चाहिए. कहीं किसी भी परिवेश में आए, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में आए, चाहे प्रचार के केंद्रों में आए, उसको बिल्कुल महसूस करना चाहिए कि मैं तो घर में आया हूँ. ये भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, तभी हम सच्चे वैष्णव बन सकेंगे. ठीक है, कोई प्रश्न है, जिज्ञासा? नहीं, ठीक है, वी शैल स्टॉप हियर. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।